نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم amma ba Allah subhanahu wa ta'ala Quran e Hakim mein irshad farmate hain qad aflaha al mu'minun bahut hi حسین خوبصورت اور بر وقت اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے. اس کی خوشی کا اندازہ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہو آدمی سفر پر روانہ ہو راستہ بھول جائے بھٹک جائے اور اتنا گم ہو جائے راستے میں کہ اس کے بیچارے کا کھانا وانا جو تھا زاد راہ جو ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو جائے, گاڑی تھی وہ بھی خراب ہو جائے, اتفاق یہ کہ طوفان بھی آ جائے, بجلی بھی چمکیں, کوئی سمجھ نہ آئے کہ کس طرف میں جاؤں, کس راستے پہ میں جاؤں, کس طرح میں اپنی منزل تک پہنچوں. تو سپوز کر لیں میں اور آپ اپنا اپنا کر لیں کیا حال ہو سکتا آدمی کا, کتنا سخت پریشان ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہ آئے کیا کریں کس طرح ہے. اچانک ہی کوئی شخص آ جائے, اچھی گاڑی ہو اس میں کھانا بھی ہو, اور ایک دم آ کر رکے ہو کہ بھائی آپ کہاں جانے ہیں, چلنا ہے آپ نے, تو وہ اس سے پوچھے جی آپ کہاں جا رہے ہیں, تو وہ اسی منزل کا نام بتائے جس منزل پہ وہ جانا چاہتا تھا, تو اس کی خوشی کا جو اظہار ہوگا آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگا. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک نئی زندگی انسان کو مل جاتی ہے, کس قدر راحت اور سکون ہوگا اس کے قلب میں, کس قدر مطمئن ہوگا وہ شخص. بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں, آگے گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے, ہم ایسے بیٹھ جائیں. تو اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھیں, قد افلح المؤمنون, کہ ایمان والو میں تمہیں فلاح کا ایک راستہ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ اس وقت ہے پیغام. میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آدمی کیا رہا بھٹکا ہوگا کہ جو ہم بھٹک چکے ہیں, ایسے بھٹکے ہیں کہ ہزاروں منزلیں ہمارے سامنے بن گئی ہیں, سمجھ نہیں آتا کون سی منزل صحیح ہے, کدھر جائیں کدھر آئیں, ایک افراتفری اور فتنوں کا زمانہ ہے, بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, اپنے اپنے دین بنائے ہوئے لوگوں نے اپنا اپنا حساب کتاب رکھا ہوا ہے, بلکہ وہی نشانی ہیں ساری قیامت کے نزدیک فتنوں کے جو اس زمانے میں پائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں غور سے سننا میری بات, آپ کو پتہ ہے میں تقریر شکیر تو کرتا ہی نہیں ہوں, بہت غور سے سننے اس بات کو. खुदा की कसम, मौत आएगी, मौत के एक झटके में इंसान की हकीकत खुल जाएगी। अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत करम है, इंतहाई दर्जे का करम है कि ऐसी मजलिस हमें नसीब हो जाती है कि जिसमें वाहिद और वाहिद कहने वाले का भी और यकीन सुनने वालों का मकसद जो है कि हमारी आखिरत बन जाए। ऐसे अंधेरों में गुम है हम, मादियत का, नफ्स का, शैतानों का, गुमराहियों का, जैसे उस आदमी मिसाल दी, हाथ ही सुझाई नहीं देता, समझ ही नहीं आता। इतनी चीज़ें गालिब हो गई इंसान पे, कोई गम है किसी में, कोई गम है कि किसी फिक्र में है। पकड़ा है दीन को हमने सतही तौर पर, वो दर्द नहीं है दीन का। ऐसे मौके पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर जर्रे बराबर भी असहद लाकर हमें बिठा दे और ऐसे पैगाम हम तक पहुंचा दे और अल्लाह करम फरमा दे कि हमारे दिल में ये पैगाम उतर जाए तो जिंदगी बन जाए। कद अफलह, कद अफलहल मोमिनून, अभी सोचें कितनी की बात कर रहे हैं अल्लाह पाक, सोचें ये क़यामत हशर उस जहन्नुम से बचाने की बात कर रहे हैं अल्लाह पाक कि तुम्हें मालूम नहीं तुम कितने नज़दीक हो जहन्नुम के, तुम्हें कुछ पता नहीं इस चीज़ का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम वाकई चाहते हो फलाह हासिल करना, आखरत को हासिल करना, तो आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले क्या बताया अल्लाह ताला, अब अल्लाह ताला का ये कोई आम आदमी तो नहीं है, इंसान भी नहीं है, तो अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने बताई है हमें रास्ते पे आने के भी, आप सुन लें, अगर हमें रास्ता चाहिए तो सब बुतों को गिरा दें और बताए हुए अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े आँख बंद करके, किसी झगड़े में ना पड़े आदमी। सही बात बता रहा हूँ, तो वक्त नहीं है अब झगड़ों पड़ने का, सीधा साधा जो अल्लाह आप इस वक्त रास्ता बता रहे हैं कुरान जो हमें, उस रास्ते को पकड़ लें, चाहिए ना पकड़ना, वक्त बहुत थोड़ा है, फितने अभी आ रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं, इस तरह कैसे कैसे फितनों ने भी आना है, लेकिन अल्लाह का कुरान और सुन्नत रसूल सल्लम दो ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को डूबने नहीं देती। कुरान अगर कश्ती है तो सुन्नत चप्पू है, चप्पू समझते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं आप इसको जो चलाता है उसको, किश्ती को चलाता है, इंग्लिश में उसका लफ्ज़ भी याद नहीं आ रहा। तो दोनों हैं अल्लाह ने हमें दिए, समझ जाए चीज़। तो पहली चीज़ क्या है, अब सुन लें, सुनते रहें। सलाती हम खाशिहून, अल्लाह ताला ने कहा भाई सबसे पहली चीज़ अगर तुम फलाह हासिल करना चाहते हो, बचना चाहते हो, सब गिरा दो, सब भूल जाओ, सब चीज़ सब भूल जाओ, बस सबसे पहली चीज़ क्या है, नमाज को पकड़ लो, सलाती हम खाशिहून, बस सबसे पहली चीज़ जो है ईमान के बाद अगर तुम फलाह हासिल करना चाहते हो। किसका जिक्र फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने, सलाती हम खाशिहून, सलात नहीं कहा, सलाते हूँ खाशिहून। कितनी इंपॉर्टेंट है ये नमाज, कितनी अहम है ये हमारे लिए। अल्लाह ने सबसे पहले इसी को लिया है, मोमिन जो है सबसे पहले जो कामयाबी की जो चीज़ है उसके पास क्या है, नमाज है। बस इसको ना छोड़, इसको नहीं छोड़। जिसने नमाज को पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कुरान कहता है कि तू सफर पे चल पड़ा है, रास्ता रोशनी नजर आनी शुरू होगी। यानी इतने अहम है, दो दफा जिक्र फरमाया इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर अल्लाह मजमून में, बाकी चीज़ों का नहीं फरमाया। जब आ रहे हैं नुकते जो बताएं, चीज़ें बताएंगे अल्लाह पाक ये करना है ये करना है, उसमें इसको दो दफा बयान फरमाया है और मुख्तलिफ तरीके से। पहले क्या कहा, सलातुन खाशियुन को फरमाया, और फिर दूसरी जगह क्या कहा, सलातुन जो हाफिजून फरमाया। दो चीज़ें बताइए कि क्या करने, हमने दो काम करने अल्लाह पाक फरमाते हैं, सबसे पहले जो हाफिजून, नमाज की पाबंदी करनी है सबसे पहले, तो याद रखें क्या करनी है, पाबंदी। इस पर थोड़ा बात भी की थी हमने, दो चीज़ें क्या है, नमाज की पाबंदी हो, सलात खाशून हो, दो चीज़ें होनी चाहिए नमाज के साथ। सबसे पहला नुक्ता ये है, भूल जाओ सब चीज़ें। कितना बड़ा अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमें, इसको बता रहे हैं कि इतना बड़ा अमल है कि मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह को सारे अमलों के अंदर सबसे ज्यादा महबूब जो है वो नमाज का पढ़ना है। جو اللہ کو یہ محبوب ہے تو فلاں مجھے کتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں میری تو محبت کا اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، بس ایک مثال ہی دیتے ہیں اللہ کے نبی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیسے ہم عاشق بن سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے محبوب بن سکتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو دونوں کو اتنی عزیز ہو وہ ہم نے مٹھی باندھ کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور ہم کہتے پھر اللہ کو رحمت دے، اللہ کو فضل دے، اللہ ہم ان سے بچا، اللہ ہم ان سے بچا، اللہ کو یہ نہیں ہو رہا آج مسلمانوں پر، فلاں نہیں ہو رہا. یعنی جو چیز محبوب ترین چیز ہے اللہ اللہ کے رسول کو، وہ ہمارے گھر میں نہ ہو اور گھر میں برکتیں تلاش کریں، ہماری زندگی میں نہ ہو زندگی میں برکت تلاش کریں. ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کی اہمیت پتہ لگ گئی آپ کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نزدیک کیسی ہے. اللہ کے نزدیک محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک. اور کیا ارشاد فرماتے تھے کہ بلال، سبحان اللہ، بلال نماز کے ساتھ مجھے راحت پہنچو، اپنے مؤذن کو فرماتے تھے. یہ حال اس نماز کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو امتی کے کیا تعلق ہے اپنا، کتنی اہم چیز ہے. ایک چیز جاگتے ہیں، اگر زندگی میں نماز ہے یاد رکھے تو الحمدللہ کامیابی پہنچ جائیں گے راستے تک، ہم ضرور پہنچیں گے اللہ کے فضل سے. نماز نہیں ہے اور نماز کے بغیر، یہ پوائنٹ ایک سنیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے لیکن نماز کے بغیر بڑی فروانی ہے، بڑی خوشحالی نظر آتی ہے، کاروبار چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے، اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، خوب دھوم دھام ہے. تو یاد رکھنا ایک چیز، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ہم تو اللہ کا فضل ہے جی، بڑا اللہ کا فضل یہ ہو گیا اللہ، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اتنا بڑا عذاب کہ اس کا جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا یہ عذاب کیا ہے. یعنی اللہ پاک اس سے اتنا سخت ناراض ہو گئے کہ اس کو مہلت ہی نہیں دینا چاہتے کہ سوچ سکے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو مہلت نہیں دیتے. یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو توبہ کرنے کی اللہ توفیق بھی نہ دیں، اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں اس شخص سے، تو اس کو فراوانی عطا فرما دیتے ہیں. ہاں دوسری طرف ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن پریشان ہے، کاروبار ڈھب ہو رہا ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، بیوی لڑ رہی ہے، بیوی بھاگ رہی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں بتا دوں آپ کو یہ کیا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، کرم اور فضل ہے اس شخص پر، اس گھر پر. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عذاب. اور اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ رحمت. لیکن یاد رکھیں وہ عذاب ہے اور یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دشواریاں پیش کر رہے ہیں تاکہ اس میں سمجھ آ جائے اور یہ توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. یہ اس کو بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ آزما کے دیکھ لے آدمی، یہ اس کو بلا رہے ہیں کہ یہ گھبرا کے نماز کی طرف کس طرح آ جائے. تو یہ تو دنیا تو کچھ بھی نہیں، حقیقت میں اللہ بچا کس سے رہے؟ آخری عذاب سے بچا رہے ہیں، جو اس کے عذاب ہیں نماز چھوڑنے کے، نماز نہ پڑھنے کے. تو کون ہوا؟ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. حقیقت میں کیا ہے کہ جس کو یہ تکلیف پہنچنی ہے فوراً سے پیش تو اس کو کسی طرف نہیں جانا چاہیے، کسی عام لوگ کے چکر میں جائے جادو ہو گئے، فلاں ہو گیا، دھنگو نہیں. سب سے پہلے اس نے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تجھے بلا رہے ہیں پاگل، اللہ تجھے اپنی رحمت میں کھینچ رہے ہیں، اللہ تجھے اپنی فضل میں کھینچ رہے ہیں. یہ تو تیری بڑی خوش قسمت ہے کہ تجھے چٹکی مار مار کے جگا رہے ہیں کہ اٹھ اٹھ بے وقوف، آ میری طرف، آ تو صحیح نا، تو آ کے ایک دفعہ جھک تو صحیح نا، میں تجھے سب عطا کر دوں، تیری پریشانی کو ختم کر دوں. لیکن اگر اس نے سوچا کہ نہیں نماز پھر بھی میں نہیں پڑھنی اور پھر بھی میں جناب ادھر ادھر بھاگتا پھرے ادھر جائے ادھر جائے، تو ڈبل اس کو عذاب ملنا شروع ہو جائیں گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پھر اس کو نکال لیتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے پھر اس کو کیا کرتا ہے کہ دے دو اس کو، پہنچا دو چیز ہے. کسی عامل کے پیچھے لگا دیا اس کا، وہ سچا سچا کوئی چل گیا چکر اس کا، بھائی دکان بھی چل پڑی، بیوی باس آ گئی واپس، مال بھی آ گیا، وہ تو پکا جم گیا نا شرک کے اوپر اور کفر کے اوپر، اس نے تو اللہ نے کہہ دیا بس، یہ تو اس سے بدتر انسان ثابت ہوا. اس حالت کے اندر کہ نماز نہیں آ رہی اور آپ دوبارہ اس حالت میں آ رہے ہیں، ہم اس اچھائی میں جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا اس سے بھی بڑا عذاب ہو جائے گا کہ اب یہ پلٹے گا بھی نہیں میرا بھائی، اب گیا، اب وہ حرام کے رستے کھلیں گے، مال آئے گا، پیسے آئے گا، تہوش اس کا جو دماغ اور عقل سب بند کر دے گا اللہ پاک اس کی، वो कहेगा मैं तो भाई इससे इस वजह से आया हूं, उसने मेरा ये काम कर दिया, उसका ये काम हुआ तो उसने ये जादू मारा, उसने ये मंत्र किया तो उसने ये काम किया। अल्लाह होकर किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, इन हालात को आप पेश करें, सबसे पहले जो आपको वसी वो बताएगा क्या, अल्लाह कौन से बताएगा, जो हाफिज हूं सलाता हूं जो हाफिज हूं, अपनी नमाज की हिफाजत करो, उसकी पाबंदी करो। पाबंदी से मुराद क्या, कि कोई नमाज भी, ये नहीं कि फजर छोड़ दी ईशा छोड़ दी नमाज, नहीं, पांच की पांच नमाज कहां पढ़नी है, जैसे कि बताया गया मस्जिद के अंदर आकर उसी तरह से नमाज के साथ। अगर कोई शख्स ये पढ़ रहा है, ये अल्लाह ताला कहता है कि फिर तुझे फिक्र की जरूरत नहीं है जो हाफिज। अगर इसमें डंडियां मार रहा है, कुछ पढ़ रहा है कुछ नहीं पढ़ रहा, कोई गर्न पढ़ रहा है, बड़ा चौधरी समझ रहा है, मैं तो जी नमाज पढ़ता हूं फलाऊ, अल्लाह ताला ढील देता है दोस्तों। अल्लाह ताला का समझ जाओ, पहला नुकता यह है जो हाफिजून नमाज पढ़ो, फिर क्या खाशियून। अब सुने इसमें एक और अजीब बात है, क्या फर्क है भाई जो हाफिजून में खाशियून के अंदर फर्क क्या हुआ, ये दो जगह बयान की है बात। यह हाफिजून तो पाबंदी है नमाज की, लेकिन एक बात सुन लें, जो नमाज हम पढ़ रहे हैं आ रहे हैं पाबंदी हो गए, एक और से सुन लें, इस पर कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बख्शिश हो। सुभान अल्लाह, अजीब बात कर रहा हूं, हर नमाजी नहीं बख्शा जाएगा, हर नमाजी नहीं बख्शा जाएगा, ये और से सुन ले, ये कुरान बता रहे हैं हमें। अभी और भी आते हैं इसमें साफ है, हर नमाजी की नमाज पढ़ ले बस चौड़ा हो गए मैं तो बख्शा गया, नहीं, हर नमाजी नहीं बख्शा जाएगा, ये तो पाबंदी हुई है नमाज की, इसमें तो आपने क्या किया, हमने नमाज पढ़ ली है उस नमाज के गुनाह से बचे हुए हैं, एक हुक्म मान रहे हैं, लेकिन क्या ये बख्शिश है इससे, उसके लिए कुरान ने फरमाया है क्या, सलातहिम खाशियून, उसकी बख्शिश मकबूलियत के लिए तुम्हारी कौन सी नमाज चाहिए, खुशू वाली इखलास वाली नमाज चाहिए। पता ही चलता है कि नमाज की पाबंदी के बाद इक्तफा ना करें, बल्कि नमाज को उस स्टेज पे पहुंच जाए जो कबूलियत तक पहुंच जाए। आज हम नमाज शुरू कर दिया तो बस हम नमाजी हो गए, बस जी बस ठीक, ना ना ना। हदीस एक सुनाता हूं मफहूम आपको हदीस का, एक मौका ऐसा भी आएगा आखिरत के अंदर, अल्लाह ताला अपने तख्त बिछाएंगे और कहेंगे बढ़ाओ भी आखिरी सवाल एक करना है सबसे, एक सवाल की तैयारी भी नमाज है, पता नहीं क्या सवाल रहेगी, आप जन्नत और दोजख का फैसला इस सवाल पर होगा अल्लाह ताला कहेंगे, अजीब अजीब मामला होंगे। हाँ भैया क्या 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 पूछते हैं आप, क्या क्या हालात आने वाले हैं जिंदगी में, हम तो इसी चक्कर में पड़े हैं सुबह और शाम जो जिंदगी सह कर रहे हैं, वो तो ये कुछ नहीं कि होने क्या वाला है, चंद देर के बाद किस मुकाम पे और क्या क्या बातें हमारे साथ होने वाली है, कुछ पता नहीं, इन्हीं चक्करों में सर करते हैं बेवकूफों की तरह, हमें शैतान नफ्स ने घुमाया गया, इससे लड़ाई उससे झगड़ा उसका फितना उसको ये सारा दिन सुबह से लेकर 24 घंटे कुछ सो जाते हैं कुछ बकवास, फिर कुछ ये आके नमाज जिस बताया ना पाबंदी कर ली किसी ने वो भी नहीं कर ली, जैसे लाइफ। अल्लाह सवाल करता है कि तुझे इसलिए भेजा था बेवकूफ, तेरा मकसद कुछ भी नहीं था, मकसद तेरा बता अल्लाह ताला बताया कि तेरा मकसद फलाह था, फलाह पाना था, तुमने इसकी तैयारी करनी थी, पूरी जिंदगी के एक एक सांस तेरा इस मकसद को हासिल करने का था कि तू फलाह पा जाए आखिरत के अंदर, हर सांस तेरा इस तैयारी के लिए निकलना था कि तू फलाह पा जाए, इसीलिए अल्लाह पाने का कि एक काम मैंने तुझे दिया वो भी तेरे लिए कि तू जन्नत में पहुंच जाए और फलाह पा जाए, बाकी सारे काम मैंने अपने लिए रखे अपने पास रखे, रिज़्क मेरे पास है, सेहत मेरे पास है, तेरी हर चीज मेरे पास है, ना तू उसको बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना तू किसी को मार सकता है ना जिंदा कर सकता है, ना तू किसी को सेहत दे सकता है, ये तो एक तमाशा है असबाब का जो हमने दिया है, आखिर कुंजी तो हमारे पास है, खालिक तो हम है, फातिर समावात तो हम है, जमीन आसमान के मालिक तो हम है, ये तो एक असबाब दे दिए, उस असबाब में हम चाहें तो असर डाल दें ना चाहें तो नहीं डालते, रज़ात है जिसको हम मानते हैं, रब्बुल आलमीन है जो कादर मुतलक, कोई चीज गारंटी नहीं कि आप जब ये काम करेंगे उससे सही हो जाएंगे, दवाई खाएंगे तो सही हो जाएंगे, कोई गारंटी दे ही नहीं सकता, जी मैं ये बिजनेस करूंगा कामयाब हो जाऊंगा, मैं फला करूंगा ये कामयाब हो जाऊंगा, ये तो अल्लाह की आजमाइशें हैं, एक कुरान की है ना कि एक आदमी बहुत सख्त, ये कुरान की आयत बता रहा हूं कि बहुत सख्त परेशान होता है, परेशानी में डूबा होता है, मेरे पास लड़ता है, मैं अपनी रहमत से उसको सही कर देता हूं, जैसे ही उसको होश आता है ठीक आता है हम उसको सही करते हैं, वो पलट के फिर वहीं चला जाता है, बेनमाजी हो जाता है, फिर मस्जिदों को भूल जाता है, फिर कहता जी मजबूर हूं, अल्लाह कहता है ये कुरान बता रहा है, कहता ये खेल खेलते हैं मेरे साथ, मेरी रहमत के साथ ये खेल खेलते हैं, मेरा हाथ पड़ गया अगर अल्लाह ताला का तो फिर कौन बचाएगा उससे, मुझे बताएगा क्या हैसियत है हमारी, हम अल्लाह से ये खेल खेल रहे हैं, अल्लाह से जिसने एक मजा चखा दिया कि तू किस हाल में था, तेरा कोई सरगर्दा ना था, तू परेशान हाल था, मुसीबत ज़दा था, किधर से मैंने तुझे निकाला। और तुझे निकाला किसने? मेरी इबादत ने, नमाजों ने, सजदे ने, जिक्र ने, कुरान ने तुझे इस तरफ ले गया। और जैसे ही मैंने तुझे ऊपर समंदर से बाहर किया, तुझे ताज़ी हवा आई, तो तू फिर खैब भाग गया उसकी तरफ से। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, कांट डू दैट, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और फिर तू पलटना शुरू हो गया उधर। अल्लाह ताला कहता है अजीब मामला है, मेरा हाथ अगर लग गया तो तुझे फिर होश भी नहीं होगा, तुझे कोई नहीं बचा सकेगा तुझसे, होश करे इंसान। नहीं समझ रहे बात? कद अफलहल मोमिनीन, अल्लाह ताला कहते हैं, आओ मैं तुम बताता हूँ असल मंजिल तुम्हारी सब बेकार है। ये कोई भी चीज जो है ये सब आर्जी है, जिस चीज तुम, ये खिलौना है। जैसे एक ख्वाब देखते आदमी आठ घंटे, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखता है, ये हो रहा है, इधर भाग रहा है, उधर आया, आंख खुलती है, सब गायब होता है, फिर वो बैठ होता है, फिर सामने आदमी ये होता है। इसी तरह इंसान मरेगा तो जब आंख बंद होगी इंसान की, तो ये सब ख्वाब बन जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी जो हमने किया था। बस याद रखें कि दुनिया में रहें लेकिन अपनी मंजिल को ना भूलें, अपनी मंजिल को ना भूलें। हमारी मंजिल क्या है? फलाह है, फलाह आखिरत है हमारी मंजिल, उन्हीं असूलों पर मिलेगी जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है, वरना सारा धोखा है जो हम कुछ कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। समझें इस चीज को, क्या खाशियून। अच्छा हाँ, वो एक मिसाल हदीस, हाँ तख्त बिछेगा अल्लाह ताला का। मैंने कहा ना नमाज से बख्शिश नहीं होगी, इस चक्कर में ना नमाज से बख्शिश हो जाएगी, बुलाया जाएगा। अल्लाह ने तख्त बिछा दिया अपना, कुर्सी लगी है, बुलाओ। पहला आदमी है वो था, उसने ये पैगाम समझा ही नहीं था, कुरान तो हजारों पढ़ लिए थे, कद अफलल मोमिनीन, समझ ही नहीं आया था उसको कि है उसका मतलब क्या है, ये किसको कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कुछ बता नहीं बेचारे। बस वही नमाज ठरक पढ़ी नहीं, नमाज कभी आगे पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, छोड़ दी, पता नहीं। अल्लाह कहेगा सिजदा करें मेरी कुर्सी को। आज ये बात कैसी लग रही है मेरे दोस्तों, कि कोई इनकार कर सकता है सिजदे को अल्लाह को? हम मुसलमान है ना, और सबसे ज्यादा आसान चीज कौन सी नजर आती है? सिजदा। अगर कोई आपसे कहे सिजदा कर, अल्लाह करेंगे नहीं करेंगे? छोटा बच्चा है ठक से करता है, यानी बच्चा होश संभालता है, उसको सजूद सजूद ठक मारता है सिजदा। मैंने देखा बच्चों को, डेढ़ साल का, दो साल बच्चा सजूद को ठक मारेगा सिजदा जमीन पर, पता कुछ भी नहीं उसको, हंस रहा है। सुभान अल्लाह, अपने रब को पहचानता है, इतना आसान। वहां गए जब लगे के दरबार, उस आदमी से कह जाएगा जो ईमान वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह था, बकरे के बकरे हलाल खा गया था, चूजे के चूजे हलाल खा गया था, हर चीज जो हलाल थी बस उस पे था उसके ईमान, बाकी कुछ पता नहीं था उसके। मजे मजे जो दीन में मजे थे ना, मजे का पता था, कुल्लू अशरफ तक था दीन से आगे उसका दीन कुछ नहीं था। पढ़ कर सीधा मुझे, वो झुकने की कोशिश करेगा उसका तख्त बन जाएगा कमर, चीखने लगेगा, कहता है उठाओ इसको, उठाओ जहन्नुम पहुंचा दो इसको, दूसरे को बुलाया जाएगा। वो सोच देख रहा होगा, मैं तो नमाज पढ़ता ही था ना, मैं तो कर दूंगा सीधा। वो पहुंचा कर सीधा, वो क्या था नमाजी, तरखबाज, सुबह की पढ़ ली, शाम को नहीं मिली, सुबह को पढ़ ली, इधर की नहीं पढ़ ली, ये मजबूरी वो मजबूरी, इधर की बात इधर की बात, इधर पढ़ ली उधर पढ़ ली, वेयर हाउस में पढ़ ली, गली में पढ़ ली, बाहर पढ़ ली, मस्जिद से पास गुजरते उधर पढ़ ली, किसी टाइम पे पढ़ ली, किसी टाइम पे नहीं पढ़ ली। वो बड़ा चौड़ा जी, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो जी बड़ा पक्का नमाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ। इंद्र जी घर में पढ़ लेते हैं नमाज, ये तो उधर पढ़ लेते हैं, हमारे बाप का मजहब है, ये हमारे बाप का दीन है। एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आप उसका एक एक लफ्ज सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते। चैलेंज होता है हाई कोर्ट के अंदर कि सेंटेंस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, इसके मुताबिक इसने काम नहीं किया, होता ही नहीं होता। एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेंटेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी मुल्क का, आप दीन का हिसाब ही चेंज करेंगे पूरा, बाप के मजहब समझ लिया, ये तो इंतहा कर दी, तो हम उनसे भी आगे बढ़ गए जिन्होंने पैगंबरों को बना लिया था औलाद और वालिद बना बैठे थे। ये हाल है, कौन सा मजहब है मियाँ, किस तरफ लगेगा झुक, वो झुक रहा है, झुक दे ऐसी की तैसी उसकी कमर झुकती है। यदि पकड़ के सीधा ले जाओ इस पार्टी को, धड़क जहन्नुम में, कोई हिसाब नहीं। अजी फला फला जाए सीधा, मैंने कहा नहीं कहा, सबसे पहले चीज क्या थी, क्या क्या कुरान, सबसे पहले चीज क्या थी, बाकी बागें बाद में, सब जो तू करता रहा बाद की बातें, इधर जा, कोई हमें नहीं समझ आ रही तेरी क्या, अपने तू हिसाब किताब पेश कर, चल कोई तेरे उदेश सब खत्म, चल सीधा जहन्नुम में, तूने पहली बातें मेरी नहीं मानी जो मुझे सबसे महबूब थी, मेरे हबीब की आंख की ठंडक थी। है ये सही बात नहीं? तीसरा आदमी आ जाएगा, पांच टक नमाज, मैं तो बड़ा चौड़ो के जाएगा, कर सजदा, सजदे नहीं हो रहा, क्यों जी? मैं तो 5 वक्त नमाज जनाब पढ़ता था और जाके बिल्कुल जैसे अजान होती थी पहुंच जाता था। मैं तो जनाब नमाज में भी खड़ा होता था, कभी कभी तकबीर दे देता, कभी मौका मिलता तो अजान भी टिका देता था। जनाब मैं तो पक्का नमाजी था, मुझे तो नमाज बड़ी अच्छी आती थी, फला आती थी। सीधा क्यों नहीं हो रहा? कुरान नहीं पढ़ा था तुमने? पढ़ा था जी। नहीं बताया था सलातिन खाशी हूं, तेरी नमाज में खुशू नहीं था, अखलास नहीं था, नमाजी पढ़ता रहा ना तो मैंने तो कुछ और कहा था। पाबंदी तक गया ना, ले जाओ जहन्नुम में डालो उसको। फिर दरवेशों की पार्टी आएगी, सुभान अल्लाह, अल्लाह दरवेश, दरवेश उठेंगे। फिर कौन से दरवेश? जिनके आज मजाक उड़ाती है दुनिया, अल्लाह दरवेश आएंगे। जिस वक्त कुएं आएंगे तो अल्लाह ताला उनको खुद कहेगा कि तुमने क्या सजदा करना, तुम तो सारी जिंदगी सजदा करते रहे, जाओ जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है, जन्नत में चले। तो जहां रोजे क़यामत में किस नमाज का कुछ हिसाब फला मिलेगी, किससे? खाशियों से। तो अब पाबंदी से खाशियत तक जाने के लिए नमाज के लिए, इसका नाम मुजाहदा है, इसका नाम कोशिश है। ये कैसे हासिल हो, ये हमें कैसे मिले, ये बात की बात कुरान ही बताएगा। पहले 2-3 बातें और कर ले। आज तो टाइम है थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत कुरान की पढ़े, अल्लाह ने पहली चीज क्या बताई है, जोर से बोले भाई, नमाज। ये तो समझ आ गई बात, नमाज में 2 चीजें क्या है, पाबंदी और खुशी। अब पाबंदी का पता लगाया और खुशू का पता, अब हमने ये देखना है खुशू लाएं कैसे या खुशू कैसे आएगा, उसके लिए क्या मेहनत दरकार है, हमें कौन से असबाब अख्तियार करें। अब ये हमारी जिंदगी का आइटम है, ये मोटो है, ये टारगेट है। जिसने इस टारगेट पर मेहनत नहीं की, कहां से पाबंदी से लेके खुशू तक, जिसने इस पर पाबंदी अख्तियार नहीं की, तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। ये पैगाम है आज कुरान का, आप गौर से सुन लें। जो नमाजी हैं 5 वक्त नमाज तक पहुंच गए, पढ़ते हैं तो अभी अभी कामयाब नहीं हुए, अभी कहां तक लेके जाना है, खुशू तक नमाज को लेके जाना है। दूसरी चीज अल्लाह ताला क्या बताते हैं, लघु मोरे धूम, यही है ना कुरान की है। क्या कि भाई नमाज के बाद दूसरी चीज तुमने कंट्रोल करनी है फला तक पहुंचने के लिए, वो क्या है, जबान, बकवास, बेहूदगी, फजूल चीजें, सब किससे होती हैं, जबान से होती हैं। इसको कंट्रोल करो, इस पर मेहनत करो, ऐसे बना लो जबान में वो ताकत आ जाए कि वो गंदी बात कर ही ना सके। जी कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में है जबान, याद रखे, इसको ये ना समझें कि जो चाहे आदमी बोलते नहीं, क्योंकि हम इसके जो होता है घोड़ा, जंगली घोड़ा फिरता जहां चले जाए, लेकिन जैसे उस पर लगाम डालते हैं तो वो काबू हो जाता है, जिस तरफ चाहे उस तरफ चलना शुरू होता है। जो सारी चीजें कंट्रोल में इंसान की, हमने इसको छोड़ा हुआ, बेबाहंग छोड़ा हुआ, जो बकवास मुंह से कर देती है, कोई जिधर सोना जिधर, यानी ऐसी ऐसी बकवास मुंह से निकल जाती है कि पता नहीं होता मैं क्या कह रहा हूं, किससे झगड़ा, किसी से लड़ाई, किसी को कुछ, किसी को कुछ, बेसोचे समझे अपनी बेहूदगी, फिर गलत बातें, फिर सारी गैर शरी बातें, ये सब कौन करती है, चुगली, सब कुछ ही से निकलती है। अल्लाह के अल्लाह सवाल फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते डायरेक्ट हमसे कह रहा है, लघु मोरे धून, बंद कर दे बकवास बेहूदी, इस पर भी तुमने कंट्रोल करना है। 2 चीजें, तीसरी चीज अल्लाह ताला कहते हैं, लिफ्रूज हम हाफिजून, वो क्या चीज है, अपनी शर्मगाहों को हयादारी, हयादारी, शर्म पैदा करो अपने आप में, हया पैदा करो, निस्फुल ईमान है हया। खासतौर पर ख्वातीन गौर से इस बात, इस आयत को गौर से पढ़ें, इस नुक्ते को, नमाज भी है, मुंह भी सही हो गया, लेकिन हया नहीं है तो फिर भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हयादारी, हया पैदा करो अपने आप पे, कहां से हया आती है, औरतों को कहां से ब्याह बनती है, किधर से हया आती है, मर्दों में कहां से हया आती है, कैसे हया बनती है, बताएं। फूज, फूज का लफ्ज है, शर्मगाहों की हिफाजत करो, जना से बचो, जनाओं से बचो, कई दरवाजे हैं जना के, कई खाने हैं जना के, उससे बचो अपने आप, उससे बचाओ, ये भी कंट्रोल में आ सकती है चीज, आपको शहवात भी कंट्रोल में आ सकते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं बचो उससे। ये 3 चीजों, नमाज, ठीक, लघुवात, और 4थी चीज बताइए, लामानतिम व अदिहम, ये अखलाकी चीज है, कितनी बड़ी अमानतदारी और वादा निभाना, ये नहीं चल सकता। यानी क्या कि जो चीज अल्लाह पाक ने तुम्हें दी है खयानत ना करो उसमें। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर अब एक्सप्लेन तो क्यों नहीं किया जा सकता, ये टॉपिक्स हैं, समझें इसको कि अमानतदारी और वादा, वादा वफा करना, खयानत ना हो और वादा वफादारी, वो वादे को कभी खत्म ना करे आदमी। हदीस है सही, इसमें सुन लें आप, ये बहुत बड़े गुना है, बहुत बड़े गुना है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक की तीन निशानी है, तीन निशानी है, झूठ, वादा खिलाफी और खयानत। ये अपने आप में देखना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, मैं बस अभी आई दो मिनट में, वो दो मिनट होते ही नहीं, बस ये कल काम हो जाएगी जी, आपका फिक्र ना करें, कल आई नहीं, मैं आज आया जी बस, बस ही मैं आपको आपके लिए काम कर रहा हूं, आज आया ही नहीं। 99% ये पूरी सोसाइटी का हमारा मिजाज है पक्के नमाजी, अब सीट ही नहीं मिलेगी हज करने की, उमरे करने की, खाना का भी छतों में चढ़े हुए हम लोग, दरवाजे खुले हुए हमारे लिए, अल्लाह की किताब हमें क्या ऐलान दे रही है, अंदाज लगे। मुनाफिक झूठ बोलता है, झूठ आम, यानी ऐसा हो गया झूठ बोलना तो जैसे लहसुन प्याज खाना, इतना सस्ता है झूठ। और झूठ को झूठ ना समझना, ये भी तो बड़ी बात है ना, झूठ के ऊपर झूठ कसम खा जाना, मुझे पता है यहां तक तो है, यहां तक कहा गया कि किसी ऊंट को अगर आप चारा डालना था, उसने वैसे ही कह दिया कि चारा दिखा के अभी ऊंट को बुलाने लगा, उसने आकर ऊंट आग के इसमें चारा था, कहते चारा था, कहता अगर चारा ना होता तो तू ऊंट के साथ फ्रॉड कर रहा था, ये भी झूठ हो जाता। वो इस्लाम ये बताता हो कि जानवर के साथ भी आप ये सलूक नहीं कर सकते, हमारा क्या हिसाब है कि हम किस हिसाब में जाएंगे, किस फिरते के नाम बख्शे जाएंगे, मुझे बताया फला नहीं पा सकेगा इंसान। हमारा बिजनेस में झूठ, कारोबार में झूठ, बच्चों में झूठ, घर में झूठ, टेलीफोन पे झूठ, बातों में झूठ, क्या तसव्वुफ में झूठ, हर चीज में झूठी झूठ शामिल है, खुद अपने हम झूठ बन गए, यानी एक सापा ही झूठ बन गए, पता ही कुछ नहीं हमें सच होता क्या है। वादा सुबह हमें ये बहुत जरूरी है, ये अल्लाह ताला ने हमें पूरा एक स्केच दे दिया है कि इस पे जो अमल करेगा वो क्या हो जाएगा। सुबह अल्लाह ताला फिर बताते हैं बुलाए का अमल और ऐलान किया, ये लोग होंगे, ये चार सिफात तुमने पैदा कर ली, फिर क्या उलाए का अमल वारिस, तुम वारिस हो गए जन्नतों के, वारिस होंगे, ये अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे, फिक्र की बात नहीं, ये हमारे एक सिलेबस है, सुबह से उठ के शाम तक मैंने और आपने इस पर कोई काम किया कि आज झूठा बोल रहे, आज वादे खिलाफी ना करें, आज अपनी हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, इस सिलेबस पे आज किसी ने काम किया कि मेरी कोई नमाज भी जमात के साथ ना जाए, कोई इस फिक्र के साथ उठा, हुआ और ना हुआ वो दूसरी बात है, ये उस पर पूरा उतर सका ना उतर सका, लेकिन जैसे हम अपने कारोबार कुछ करते हैं कि आज मैंने माल खरीदना है, आज मैंने दुकान पे ये रखना है, आज मैंने फला चीज रखनी है, एक स्लेपस लेकर उठे हैं ना, लेकिन वो हुआ ना हुआ, लेकिन वो एक स्लेपस तो बन गया ना हमारा, कम से कम अगर हमारे स्लेपस ही बना होता सुबह उठ के कि मैंने आज इस चार पांच काम पे पूरा अपने आप को गिर्व करना है, तो कम से कम अल्लाह खुश तो होता कि इसने इस प्रोग्राम लेकर उठा है, अगर नहीं हो सकता तो मैं इसकी मदद करता हूं। देखिए साहब मैं तो हाथ तो नहीं उठाऊंगा, मैं भी आपके, हम सब एक ही किश्ती के अंदर सवार हैं, हम तो जब उठे तो कई और हजारों किस्से कहानी थे हमारे जमाने में, हजारों हमारे मसाइल प्रॉब्लम थे जब हमने सुबह शुरू की अपनी, इस पे बड़ा इतफाक कर लिया जब हमने सुबह नमाज पढ़ ली है और शाम दोपहर को नमाज पढ़ ली, शाम को पढ़ ली, इस पे वो अल्लाह ताला उसके हमारा ऑपरेशन कर दिया ना, हमारा इन नमाजों को कुछ नहीं चलना, उन्हें सब चीजें होनी चाहिए सारी, फिर अल्लाह करता है अल्लाह का मुरवार फरदौस खालिदों, हमेशा हमेशा के लिए हो रहेंगे, ये वारिस होंगे, जन्नत के वारिस होंगे, कौन सी जन्नत, जन्नत फिरदौस। सहीन में आता है अल्लाह सुबहान तला ने जन्नत बनाई, अदम फिरदौस बनाई, उसके बाद उसने दरख्त अपने हाथ से लगाए, किस जन्नत में ले जा रहा था उस दरख्त, उस जन्नत के दरख्त अपने हाथ में लगाए, और हाथ लगाने के बाद अल्लाह ने कहा
जन्नत से कि बोल बोल बोल, तो जन्नत क्या बोली?
कंद फलहुल मुमिनून,
जन्नत कस आयत ने उसने पढ़ दी जन्नत के अंदर। ये उस वक्त पढ़ी गई याद, सुने याद, ये प्रोग्राम से अल्लाह पाक दे रहे ना, तो उसने पढ़ी और पढ़ के मस्त होकर जन्नत ने कहा वो लाई का हमुल वारिस, आने वाले जो है उम्मती नबी के सारे वारिस होंगे इस जन्नत के जो बनाई जा रही है। झूम झूम के जन्नत ने कहा हमें खुशखबरी दी, ये वो लोग होंगे जो आएंगे इसमें बसने वाले कौन होंगे? उम्मत मोहम्मद के लोग होंगे जिनके लिए जन्नत को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाता है कि जन्नत फिरदौस मांगो अल्लाह ताला से। क्या मांगो? हाँ, हम तो बहुत चीजें मांगते हैं, है जी वीजा लग जाए, अलिफ जन्नत तक तो बड़ी देर में पहुंचते हैं, उन्होंने कहा जन्नत चाहिए ये वीजा, जी वीजा लग जाए बाद से जन्नत भी देख लेंगे जनाब, कहते तो काम हो जाए समझो, बीवी बहुत परेशान कर रही है। हाय हाय हाय, कितने दूर हैं मौत से अपने, कितने दूर समझते हैं। ओके ये चाबी चाहिए दुकान की या तुझे जन्नत चाहिए? कि बताना ना किसी को, चाबी पहले दे दें, जन्नत की इंशाल्लाह की तैयारी कर लेंगे, हर साहब पर जाएंगे जिक्र कर लेंगे। वो कहते हैं हर जिक्र के बाद बख्शिश हो जाती है, बड़े बड़े पैंतरे हमने रखे हैं, बाकी बातें नहीं सुनते हैं मेरी, ये सुन आती कि जन्नत की जनाब जैसे जिक्र हुआ और जिक्र हुआ बख्शिश होगी, ये बाकी जो बातें हैं बख्शे के पहुंचने के लिए। भाई किसी वायस की मजलिस में जाओ तो पूरी बातें सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, पूरी भी अमल करना चाहिए ना। कौन सी है? अल्लाह के नबी फरमाए जन्नत मांगो करो जन्नत फिरदौस। क्यों? सुन क्या तारीफ है जिसके लिए अल्लाह ताला वारिस बना रहा है, इन चार चीजों पर, इन चार चीजों पे आपको और मुझे जन्नत फिरदौस अदा की जा रही है, जन्नत अदन अदा की जा रही है। उस जमाने में जो इस आयतें पूरी जन्नत ने वो हमें बताई जा रही है, और क्या कि ये जन्नत हमें दी जा रही है, इसकी तारीफ क्या है जन्नत की, कि जन्नत सबसे अफसल जन्नत है। नंबर दो, इस जन्नत ही से अंदर सारी नहरें इस जन्नत से निकलती हैं, सारी जन्नत में जो नहरें हैं ना दूध की सब इससे निकलती हैं जहां अल्लाह ताला हमें रखेगा, सुभान अल्लाह। और फरमाया इस जन्नत ही के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या काम करने हमने? चार काम करने, अपनी नमाजों को खुशियों तक पहुंचाना है, अपनी जबान को कंट्रोल करना है, और जनाब अपनी हया और शर्म को बुलंद करना है। ये सब चीजें हैं ना, कोई मुश्किल है? अल्लाह ताला इसी के अंदर बयान फरमाते हैं कि लाओ तरकीब भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ला ज़कात फारून, इसमें है ना। तो पूरी पूरी आयतें नहीं पढ़ रहा, आखिर आखिरी फिक्र पढ़ रहा हूं, पूरी आयत आपको समझ आएगी, इसमें काफी ज्यादा तो समझ लेंगे। क्या फरमाया? ला ज़कात फारून, अब सुन लें, इसमें पूरा इलाज बता गया कि किस तरीके से चार चीजों को तुम मेहनत, कौन सी मेहनत करनी है और किस तरीके से मेहनत से तुम इस पर पहुंच सकते हो, वो कौन सी मेहनत है? ले सका तुम भाई पाक करो, पाक करो। अब उलमा कलाम ने दो चीजें लिखी हैं पाक के, ज़कात। क्या ज़कात? फरमाया ज़कात जो है पाकी की तरफ लेकर, पाक करना है तुमने अपने आप, काम कहते हैं कि इससे बात क्या है कि माल, माल को पाक करो, और दूसरी चीज क्या है? अल्लाह नफ्स को पाक करो। दोनों चीज इसमें आती है, क्या आती है? माल को पाक करो और नफ्स को पाक करो। माल को पाक करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्या है पूरा माल पाक हो जाएगा, जब माल को पाक करोगे हलाल हो जाएगा, और जब नफ्स को पाक करोगे तो पूरा जिस्म पाक हो जाएगा। समझाए किस तरह कि माल को पाक करने के लिए क्या चीज है, माल को जी कैसे पाक करें? अल्लाह ताला कहते हैं ज़कात दो माल की तो तुम्हारा माल पाक हो जाएगा। अजी नफ्स को पाक करने की क्या चीज है? अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह का जिक्र करो तो नफ्स पाक हो जाएगा। माल पाक हो गया तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारा माल हल्का हो गया, एवरीथिंग पाक हो गई, हो गया। और जब नफ्स पाक हो गया तो क्या हो गया? अल्लाह होगा तुम्हारी नमाज खाशियों वाली खुशियों वाली नमाज हो गई, तुम्हारी जबान पाक हो गई, तुम्हारी शर्मगाहों में हया आ गई, तुम्हारी अमानतें और वादे पूरे हो गए। किस चीज से? तस्किया जिसको कहते हैं, नफ्स तस्किया के साथ रास्ता पता चल गया। क्या करना चाहिए? तस्किया है नफ्स, नफ्स को पाक करना चाहिए। किस चीज से पाक होता है? अल्लाह के जिक्र से पाक।
तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम पाक होना चाहते हो तो पाक होने के लिए एक ही चीज है, अपने नफ्स को पाक करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी नमाज में खुशबू आएगा। बर्बाद नमाज को कौन करता है? नफ्स करता है, ख्वाहिशात करते हैं, गंद डालते हैं नमाज के अंदर। खुशबू क्या चीज है? यदि क्या चीज है वो खुशबू वाली नमाज क्या होगी? खुशबू वाली नमाज जिसमें खौफ होता है, जिसमें हजूर कल्ब होता है, जिसमें सुकून होता है, जिसमें तवज्जा मुकम्मल अल्लाह की तरफ होती है, जिसमें बिल्कुल यानी डूबा हुआ होता है अल्लाह की जात के अंदर, सब कुछ उस वक्त अल्लाह होकर करने के बाद सब कुछ गायब होता है, वो एक दरख्त बन जाता है, जिस समय एक अजीब चीज बन जाती है, जिस सब अल्लाह के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं होता। और ये सहाबा कराम की जिंदगी में हमने देखा है। लेकिन क्योंकि खशून ये क्यामत तक चल रही है तो ये सहाबा तक खत्म नहीं हो गया। मैं आपको अभी का वाक़ा सुनाता हूं, कुछ सालों पहला, यानी इस जमाने की बात है, जब आप पैदा हो चुके होंगे। अल्लाह का एक वली है, उसको बीमार हो गया। सच्चा वाक़ा आपको सुनाता हूं, क्योंकि चलना है। और आज भी होंगे, आज भी वो लोग जो नमाज खशियत रखते होंगे वो अल्लाह बिल्ला होंगे, क्यामत तक चलना है ये। क्योंकि आज भी लोग हैं जो माल के साथ अपने नफ्स को भी साफ करते हैं और तस्किया करते हैं। वो जब आते हैं किसी अल्लाह वाले के पास या अल्लाह का जिक्र सीखने, उनके अंदर और कोई चीज नहीं होता, वो ये आयात होती है कि हम आए इसलिए, हम आपके पास इसलिए आए कि हम फलाह चाहते हैं। अल्लाह ने बताया ये रास्ता है फलाह का, ये चारों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारा जब पाक हो जाएगा नफ्स तो तुम्हारी नमाज भी पाक हो जाएगी, तुम्हारी जबान भी पाक हो जाएगी, तुम्हारी हर चीज पाक हो जाएगी। अल्लाह ताला कहता है और तुम वारिस हो जाओगे जन्नत के, जिसमें तुम पहुंचाना चाहते हैं। ये मेहनत है हमारी, करेंगे नहीं? कितनी बड़ी बात बताइए, वरना नाकाम ही नाकाम। सब ड्रामा ये देख लें आप, करते हैं जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहता है करते बजाते रहो, डूब डूबी कुछ नहीं। इस रास्ते से मिलेगा जो रास्ता आपको बताया जा रहा है, वो तस्किए का रास्ता है, तस्फिए का रास्ता है, नफ्स को कंट्रोल करने का रास्ता है। वो कहां से मिलता है ये तो सोचिए। तो मैं बता रहा हूं, आज भी अल्लाह वाले वो मौजूद हैं। कुछ अर्से पहले की बात बताता हूं आपको, बीमार हो गए, डॉक्टरों ने कहा इसके बहुत ऑपरेशन होगा आपकी टांग का। सच्ची बात खरी, कहती टांग पे ऑपरेशन होगा आपका। कुछ ऑपरेशन कैसे हुआ हजरत? अल्लाह वाला पूछता है, देहात की बात है। कह जी ऑपरेशन तो ऐसे होगा हजरत के बेहोश करेंगे आपको, बेहोश करके फिर काटपीट होगी थोड़ी बहुत, वो चीज निकालेंगे जो है इसमें। किसी बेहोश की चीजें करते हैं, किसी बेहोश की दवा देते हैं। कहते जी मेरे मस्जिद में बेहोश होना गलत है। उन्होंने कहा अल्लाह वाला, क्योंकि नशे वाली चीज जो हराम है और मैं वो चीज लेना नहीं चाहता। कहते फिर तो हो नहीं सकता ये ऑपरेशन, कहते ऑपरेशन कर लें, नशे वाली चीज मैं नहीं लूंगा बस। उन्होंने कहा अल्लाह वाला मैंने नहीं लेना नशा, मुझे भी नशा नहीं होगा तो ये तो बहुत सख्त मोजी मर्द बन जाएगा आप, इलाज तो होगा पड़ा। कहता ठीक है, फिर ऐसे करते हैं कि इशराक की नमाज में जब पढ़ता हूँ तो मैं उसमें महव होता हूँ बहुत ज़्यादा। वो एक नमाज में तुम आ सकते हो मेरे पास इशराक में सुबह के वक्त, क्योंकि फजर में बाकी नमाजों में तुम मेरे पास नहीं पहुँच सकते। ऐसे करो मैं इशराक की नमाज पढ़ लूँगा। इशराक की नमाज मामूली चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो कहने लगे कि मैं इशराक की नमाज पढ़ूंगा, आप तशरीफ ले आना, जिस हालत में जाऊँ जो हालत आपको पसंद हो उसमें आप अपना काम कर देना। कहिए तो आप तड़प जाएंगे हम काटेंगे, कहिए उससे आपके सरोकार है, आप अपना काम करना, मैं देखता हूँ जो मैं बर्दाश्त कर गया तो ठीक है। नतीजे यह हुआ कि जिस वो नवाब सिद्धि में गए, जो ऑपरेशन था वो पहुंची, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन हो गया, वो नवाज से फारिग हुए। वल्लाह बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जब ऑपरेशन से फारिग हुए तो वो डॉक्टर बैठे थे, उनके ऑपरेशन कर लिया। कहता हजरत ये पट्टियाँ बंधी हुई आपके टांग पर, कुछ पता ही चला। कसम खा क्या कि मुझे तो इतना भी नहीं पता जितना कि मच्छर काटते हैं जिसम के ऊपर। सलातिम खाशियून, कुरान हक है, सच है, जो उसमें फरमाया सच है। खाशियून होता है, खशियत का यही रुतबा है। इंसान जब अल्लाह अकबर कहता है सब भूल जाता है, वो तो एक दरख्त बन जाता है, बेजान हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ जिस्म से खत्म हो जाता है। और अल्लाह को यही नमाज चाहिए, और ये नमाज हो सकती है हम चाहें, कोई मुश्किल नहीं। कब हो सकती है? सच्चे दिल के साथ तस्किया अपना शुरू कर दें, सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रग़बत करें, अपने दिल को झुका दें अल्लाह की तरफ, तस्किया और तस्फिया शुरू कर दें अल्लाह के साथ, पक्का हम कर दें आप अल्लाह के जिक्र के अंदर। जिक्र एक ऐसी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं ऐसी चीज है कि तुझे पाक कर देगा, तेरे नफ्स को चमका के रख देगा, बिल्कुल सारी चीजों को समेट के रख देता है। आज इसे तुम अल्लाह ताला कहते हैं तुम कोशिश शुरू करो, इंशाल्लाह जिस वक्त तुम आओगे नारे पड़ रहे होंगे वारिस आगे, वारिस आगे, जन्नत के वारिस आगे। मियां जिंदगी हमारे हाथ में है, सब कुछ खेल हमारे हाथ में, मेहनत करें कोशिश करें तो सब कुछ मिल सकता है। बातों से नहीं मिलता, सुनने से नहीं मिलता, कितनी तकलीफें सुनने कुछ नहीं मिलेगा जब तक हिम्मत करके नहीं उठेंगे और खौफ और यकीन पैदा नहीं होगा हमारे में यह वाकत होने वाला है। और कामयाबी का यही रास्ता है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, और यही लोग मुफलिहीन हैं जो इस तरीके से अल्लाह के पास जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक अता फरमाए।